जयंती बहन को बहुत सालों से देखते आए हैं। जब मुझे याद है कि नए नए जब पांडव भवन में रहने लगी थी तो वैसे तो दादियां बड़ी बहनें इन सभी को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था लगता था, बहुत इंस्पिरेशंस मिलते थे। खास जब जयंती बहन को देखते थे तो जैसे बहुत ही अंदर से गदगद होता था, जो बहुत ही जैसे बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज हम देखते हैं इतने लंबे सफर करके, यात्रा करके, इतने बड़े पोस्ट में आज है, तो कहाँ से शुरू हुआ, तो वो भी हम सुनना चाहते हैं कि हम आप सबको जैसे पता है कि विदेश में जो भी बाबा के सेंटर्स को ले या शुरुआत हुई, तो जयंती बहन जी के जो अलौकिक माँ है रजनी बहन, वो निमित्त बने, बाबा साकार बाबा के संपर्क में आए और उनसे ये सारा फिर शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि जब आप इंट्रोड्यूस हुए ज्ञान में, जो क्योंकि रजनी बहन ज्ञान में आने लगे थे तो इंट्रोड्यूस हुए आप, तो ऐसे कौन सी बात आपको क्लिक किया, ऐसे कौन सी बात आपको लग गया कि आपको फिर ये संकल्प आया कि नहीं मुझे भी बाबा के बच्चे बनना है, बनना चाहिए, कौन सी बात है जो
वैसे ओम शांति। कहानी तो शुरू होती है जब मैं 8 साल की थी, तो रजनी बहन ज्ञान में आई, हमारी ग्रैंड मदर ज्ञान में आई, क्योंकि दादी जानकी हमारे घर पे आती थी, हमारे ग्रैंड फादर का विशेष कनेक्शन था, तो उन्हें ज्ञान सुनाना था ग्रैंड फादर को, परंतु सुनने वाले थे हमारी मदर और ग्रैंड मदर। तो उस कनेक्शन से बचपन में क्लासेस चलते थे बगीचे में, एक मकान बाजू का ही था क्योंकि सेंटर बहुत बहुत छोटा था। तो समर के दिन थे, अप्रैल मास था, तो वहां पर बगीचे में क्लासेस चलते थे। तो पहले तो वो याददाश्त है और दादी जानकी की भी उस घड़ी बहुत अच्छी तरह से स्मृति है। फिर हम आते रहते थे भारत में बीच बीच में लंदन जाने के बाद, तो उस समय भी दादी की ही हमें राखी बांधती थी हर वर्ष, तो कनेक्शन चलता रहा। परंतु जब मैं 68 में भारत में कुछ समय लंबे समय के लिए आकर रही, तो उस समय फिर 3 मास तो टूरिज्म सोशल एक्टिविटीज करते लगता था, दिमाग थोड़ा खाली खाली है, तो अभी कुछ मुझे स्टडी करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टडी तो मैंने सोचा कि ब्रह्म कुमारीज आखिर ज्ञान क्या बताती है, मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं है। बाबा से मिले, बाबा से प्यार लिया, वो बातें ठीक है, परंतु एक तो हिंदी भी नहीं आती थी और सब कुछ उस समय हिंदी 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 था। तो तब तक थोड़ी बहुत हिंदी की भी प्रैक्टिस हो गई थी। तो दादी के पास गई और दादी को सरप्राइज लगा। फिर दादी ने कहा कि तुमको कुछ कहना है या मैं कुछ सुनाऊं? तो कहती है ना कि योगी आत्मा देव को नव्स को जान जाती। तो मैंने तो कुछ दादी को बताया ही नहीं, परंतु शायद माता जी ने बताया होगा, परंतु तो भी दादी ने ऐसी बात सुनाई जो बिल्कुल मुझे लगा कि मुझे मेडिटेशन सीखना चाहिए। वो ये बात सुनाई कि आजकल, और वो उस समय की बात है परंतु अभी भी ये बिल्कुल लगती है, दादी ने कहा कि आजकल विवेक कम चलता है और अपने जीवन के लिए डिसीजन लेना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि फ्रेंड्स, एजुकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सब जो बातें आती है वो दिमाग को एक जैसे कि पर्दा डाल देती। तो मैंने कहा कि पर्दा कैसे हटाया जाए, क्योंकि मेरी ही बात दादी कह रही थी, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी, ईस्टर्न सोसाइटी, राजयोग जीवन, फेमिनिस्ट सोसाइटी, ये सब रास्ते सामने थे, मुझे किस मार्ग पर चलना है मुझे नहीं मालूम। तो दादी ने कहा कि योग करेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा और आपका विवेक आपको बताएगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो उस एक बात से मैं कोर्स करना शुरू किया और कभी मैंने कोर्स तो किया ही नहीं था इतने वर्षों में. बचपन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फिर हम लोगों को रिपीट कराते थे तो तोते माफिक हम रिपीट करके प्राइज भी ले लेते थे. परंतु दिमाग में आकर विष्णु कौन शंकर क्या कुछ समझ में तो था ही नहीं. ब्रह्मा कौन उसको तो देखा था, तो वो कौन है शक्ल से तो जानते थे. परंतु अभी फर्स्ट टाइम मुझे आत्मा परमात्मा आदाद बहुत ही इंटरेस्टिंग फिर तो लगा, तो बस चल पड़े.
कोर्स लिया, ज्ञान लिया, ज्ञान में चल पड़े. लेकिन कब निश्चय कब हुआ कि हाँ भगवान ही है? ठीक है ब्रह्मा बाबा मिल रहे थे, मधुबन आए, लेकिन भगवान है ये.
मैं समझती सेकंड डे जब मैं कोर्स, क्योंकि सब बातों की वैसे तो एक जंबल के रीति से वो ध्यान में था, मुरली भी सुनते थे. परंतु जिस घड़ी सेकंड डे पर परमात्मा का परिचय मिला, फर्स्ट डे आत्मा, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा. सेकंड डे परमात्मा का परिचय मिला और उस समय योग का बहुत सुंदर अनुभव हुआ. तो सेकंड डे से ये निश्चय होने लगा कि हाँ यही बात है, यही सत्य बात है. फिर तो मेरे कुछ क्वेश्चंस नहीं थे तो कोर्स तो बहुत जल्दी. इनफैक्ट तीसरे दिन दादी ने मुझे कहा कि मुरलियां तो तुम मधुबन में सुनती थी, तो क्यों ना तुम सवेरे आओ मुरली सुनने और फिर शाम को कोर्स करने आओ. तो सुबह शाम जाना शुरू हो गया था. तो सेकंड डे मैं समझती, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया.
आजकल कहीं देखते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, कोर्स लेते, बचपन से ही माँ बाप के कारण से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं होता है कि समर्पित होना है. आपका लाइफ भी जब देखते हैं कि मैंने लंदन में रहने वाले पहली कन्या मुझे लगता है कि जो समर्पित हुए यज्ञ में, जो विदेश में रहने वाले, इतना चकाचौंध की दुनिया वहां, पहले इंडिया की बात अलग, लेकिन लंदन में रहते हुए लेकिन ये डिसीजन लेना कि मुझे समर्पित होना है, वो हिम्मत कहां से आया आपको?
जब ज्ञान में सुनती रही तो कई प्रकार के विचार बदलते रहे वो सात दिन के अंदर ही. तो जो फ्रेंड सर्कल था तो उससे लगता था ये तो बोरिंग है, ये तो अभी मुझे उनके साथ ज्यादा समय बिताना वेस्ट ऑफ टाइम होने लगा. फिर दादी ने कहा कि 6 सप्ताह के अंदर कि महाबलेश्वर में प्रदर्शनी है और वहां पर आप क्यों नहीं आप और रजनी बहन जाओ, तो हम लोगों को बड़े बड़े जो वो तेल के डब्बे नहीं होते हैं एल्यूमिनियम के, तो वो टोलियां भर करके हम लोगों को दी, क्योंकि 40 लोग थे. और दादी को मालूम था कि दादी प्रकाशमणि है वहां और भोजन बनाने के लिए तो कोई इतना समय भी नहीं है, तो खूब सारी टोलियां दे करके दादी ने हम लोगों को महाबलेश्वर भेजा. तो जिस घड़ी मैंने महाबलेश्वर में, और उस समय रमेश भाई थे, तो बड़ी दादी ने रमेश भाई को कहा इसको तुम इंग्लिश में ज्ञान सुनाओ, क्योंकि तब तक भी फिर हिंदी हिंदी ही चालू था. तो रमेश भाई ने मुझे प्रदर्शनी इंग्लिश में समझाई. फिर तुरंत ही मुझे कहा, क्योंकि बहुत अच्छे लोग आ रहे थे और कोई इंग्लिश भी हिंदी भी नहीं समझने वाले थे, मुझे कहा कि तुम इन्हों को समझाओ. तो मैंने कहा आपने तो 45 मिनट्स में मुझे समझाया, मैं तो एक एक चित्र पर दो दो मिनट ही बताएंगी. तो उसने कहा कोई बात नहीं तुम दो दो मिनट ही बताओ. इतना लंबा ज्ञान तो ध्यान में ही नहीं था जो उनको सुनाओ. परंतु मैं देखती थी कि जो आते हैं, चाहे और भी उनको सुनाते हैं, चेहरा एक होता है और निकलते समय उनका चेहरा बदला हुआ होता. तो मुझे पता चला कि सेवा क्या होती है. नहीं तो रहते थे लंदन, आते थे 4 दिन के लिए मधुबन, बाकी मधुबन और सेंटर पर राखी के लिए जाते थे, बस इतना तक था. तो सेवा क्या हो रही है, कैसे होती है सेवा, वो कुछ पता नहीं था. बाबा कह रहे हैं सेवा मतलब क्या, परंतु प्रैक्टिकल मैंने सेवा का स्वरूप देखा कि ज्ञान थोड़ा भी सुनने से कैसे उनका चेहरा बदल जाता, तो मैंने सोचा कि ये है सच्ची सेवा और ये सेवा मुझे चाहिए, मुझे यही सेवा करनी है। और जब हम 14 साल की थी, 1564 में हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे 6 वर्ष के बाद भारत में। मॉनसून का टाइम था, बॉम्बे एयरपोर्ट से बॉम्बे शहर में पहुंचने में आपको मालूम है कि झोपड़पट्टी आती, उन दिनों में भी झोपड़पट्टी थी, इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है, परंतु झोपड़पट्टी रास्ते पर ही आती थी। तो मैंने देखा कि 1 घंटा भारत धरनी पर पहुंचने के बाद, रात्रि को मिडनाइट वही सीन देखी कि बारिश गिर रही है और उनका जो छोटा सा झोपड़ी बनी हुई थी वो थी कार्डबोर्ड की, कार्डबोर्ड आप समझते हैं
दादी
तो वो बिल्कुल पिघल के गीली होकर के वो खत्म हो गई थी। तो और वो लोग कहाँ जाएंगे, वहां ही बैठे थे। तो वो जो सीन मैंने देखी, मुझे तो संकल्प आया मुझे वापस लंदन जाना है, मुझे ये और आगे सीन नहीं देखनी है, परंतु वो तो नहीं होने वाला था। परंतु वो जो टोटल ही भारत की जो गरीबी देखी उस घड़ी, मुझे ये मन में संकल्प आया कि मुझे अपने लिए जीवन नहीं बितानी है, मुझे कुछ सेवा अर्थ अपनी जीवन देनी है। परंतु क्या सेवा, वो भी दिमाग में तो उस समय पूरा नहीं था। फिर बाबा ने जो सेवा दिखाई मुझे महाबलेश्वर में, उससे मुझे नकी हुआ कि मुझे ये करना है। फिर पूना में आकर के, क्योंकि दादी की तबीयत नहीं थी जो वो महाबलेश्वर चले, तो हम लोगों को ही भेजा था। फिर दादी ने पूछा अनुभव, तो वो तो जनरल तो सुना लिया। फिर मैं दादी से अलग मिली गुरु नानक नगर सेंटर, कईयों ने नहीं देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा, 20 लोग खिचखिच करके बैठे हैं, कोरोना वायरस में तो शायद 5 लोग ही उस कमरे में बैठ सके, परंतु उस समय तो वायरस नहीं था, तो 20 लोग वो फिल हो जाता था क्लासरूम। फिर इसको थोड़ा डबल करो, बस इतना ही किचन था, 2 लोग खड़े हो सकते। फिर छोटा सा कमरा जहाँ दादी और सुमरी बहन रहते थे, और बिल्कुल बीच में जगह, एक व्यक्ति जाए दूसरा व्यक्ति नहीं आ निकल सकता। फिर बालकनी बिल्कुल इतनी जैसे ही थे, इस टेबल जितनी ही, तो प्राइवेट स्थान बात करने का वो बालकनी ही होती थी। तो दादी ने मेरे चेहरे को देखा जब मैंने कहा मुझे बात करनी है, तो दादी मुझे बालकनी लेके गई और वहाँ खड़े खड़े मैंने कहा दादी को कि मुझे समर्पण होना है। तो दादी बहुत आश्चर्य खाई, तो दादी ने कहा सच्ची, मैंने कहा दादी, तो दादी ने कहा पत्र लिखो बाबा को। तो मैंने पत्र लिख करके उसी समय दादी को दिया, दादी ने तुरंत पोस्ट किया। उन दिनों में 24 घंटे के अंदर पोस्ट पहुंच जाती थी। तो दूसरे दिन क्लास में जाने पर, फिर क्लास के बाद दादी ने मुझे कहा आओ, तो मुझे फिर उसी बालकनी में लेके गई और मुझे एक टेलीग्राम दिखाया, ईमेल फैक्स मोबाइल से पे ही नहीं, टेलीग्राम थे। तो वो टेलीग्राम बहुत करके किसके शरीर छोड़ने पर ही वो होता था समाचार। तो ये मैंने बहुत आई वाज सरप्राइज, तो मैंने खोल के देखा, तो उसमें इंग्लिश में ही था, परंतु भाव ये था कि जनक बेटी आ रही है, ये बातें पत्र में नहीं बताई जाती है, तुम रूबरू जनक बेटी के साथ आओ और आकर के बाबा से बातचीत करो। तुरंत नेक्स्ट डे टेलीग्राम, बाबा पत्र के लिए भी नहीं रुके कि 24 आवर्स लगेगा, पत्र भेजा, टेलीग्राम भेजा।
जब समर्पित होते या लाइफ जब चेंज होता है, या स्थान चेंज होता है, लोग साथी भी चेंज होते हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत आता है। तो आपका तो फिर लंदन का लाइफ था, यहाँ इंडिया में वो भी पूना में इतने छोटे से घर में रहते हुए दादी के साथ रहे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। तो मैं एक्चुअली इसको 3 कैटेगरी में देखना चाहूंगी, कि एक है आपका चाइल्डहुड डेज, जो ज्ञान के चाइल्डहुड डेज, जो इनिशियली आप पूना में रहे और फिर जो तो वो एक स्टेज, फिर बाद में जब लंदन जाकर के फिर ये सारे सेवाएं जो विस्तार हुआ वो सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज जो अभी पहुंचे हैं आप, जो यूके और यूरोप के जो डायरेक्टर हैं आप जो सेंटर्स के, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस तो जरूर हैं। तो उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस किया, तो कौन सी बात है जो आपके अंदर वो चैलेंज, कौन से चैलेंजेस थे? और ये लंबा क्वेश्चन है बट
जब बाबा के साथ बाबा को बताया मधुबन में, तो बाबा ने तुरंत कहा, बाबा पहले से ही जानते थे। फिर मुझे याद आया कि 3 वर्ष पहले 1966 में, 2 वर्ष 3 वर्ष जब हम फर्स्ट टाइम मधुबन आए थे, तो उस समय बाबा ने मुरली में कहा था कि ये स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे। तब तक मैं बात इस बात को भूल गई थी, और मैंने जिस समय सुना तो पूरा समझा भी नहीं रूहानी शब्द क्या है। मुझे आमतौर से भाषा में ये नहीं बात आती है शब्द, तो रूहानी जिस्मानी इसका फर्क भी मुझे नहीं पता होता था। तो बाबा ने मुरली में कह दिया, तो मैंने सोचा बाबा हमेशा सबको ऐसे शायद कहते होंगे उनको उमंग बढ़ाने के लिए, परंतु जिस घड़ी बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही कह दिया, फिर लगा कि बाबा आत्मा को देख करके भविष्यवाणी बताई होंगी। तो वो इस तरह से बाबा ने तो तुरंत फिर स्वीकार किया, और फिर बाबा कई बार मिलते रहे, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही। पूना में जाने पर अनएक्सपेक्टेड बात हो गई कि कुछ लोग जो ज्ञान में चलने वाले, और एक बहन जो अभी तो उसने शरीर छोड़ दिया, परंतु वो उसका भी विशेष पाठ था यज्ञ में, तो उसने आकर के मेरे घर पे, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा तुम घर पे जाकर के फिर अपना सारा समेट कर फिर मधुबन आना, फिर बाबा तुमको कहीं और जगह भेजेंगे। तो वो बहन हमारे लौके घर पे आकर के मुझे और रजनी बहन को बातें सुनाती थी कि जयंती तुम सेंटर पर नहीं रहना, तुम अपने घर पे ही सुखी रहना, क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारी ज्यादा वैल्यू होंगी, तुम सेंटर पर आकर रहेंगी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होंगी, और तुमको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बातें बताने लगी, और रजनी भी उसकी बातें सुनकर के ऐसे ऐसे कहने लगी, उसने भी बहुत संस्कारों की बातें तो देखी ही थी तब तक, उसको भी तो ज्ञान में तब तक तो बहुत समय हो गया था, 11 साल हो गए थे तो देखा था, परंतु उसका उनकी बातों का मेरे पर कुछ असर नहीं रहा। मैंने सोचा कि ये तो अपनी कहानी सुना रही है, मेरी कहानी हो रही है, पता नहीं क्यों उस गरीब बिल्कुल
वो बात गई नहीं,
कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा। फिर रजनी बहन मुझे ठोक ठोक करके देखने, कहते हैं ना कि कुछ भी सौदा करना होता है, एक मटका भी लेना हो तो उसको ठोक ठोक करके लेना होता है, तो वो भी मुझे कहती थी कि तुम हमेशा 2 सप्ताह के बाद भारत में आकर कहती थी यहाँ तो गर्मी है, यहाँ तो मक्खियां है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, तुम सेंट्रल लाइफ में कैसे चलेंगे? फिर भी जो यहाँ कुछ सुविधाएं हैं 68 में, तो अभी तक बहुत सिंपल सेंटर्स थे, कोई भी सेंटर शायद एक तो होंगे जिसमें बहुत सुविधाएं हो, परंतु सभी तो मधुबनी बहुत सिंपल था, नलके का पानी, गर्म पानी, एक जहां टोली का कमरा है ना वहां सामने जहां बर्तन धुलाई होते हैं आज तक भी, वहां एक गर्म पानी का नलका था, बाकी अपने कमरों में ठंडा पानी था। और हम आते थे बारिश के मौसम में हमेशा, तो गर्म पानी की जरूरत होती थी, तो भाई लोग बहुत अच्छी तरह से मदद करते थे, सेवा करते थे। प्लास्टिक की बाल्टियां भी मधुबन में आई थी, कांच की जो बाल्टियां होती है ना मेटल की, खाली बाल्टी उठा वो ही भारी है,
लोहे की।
पानी उसमें हो, गर्म पानी और आप उसको उठाओ, उसमें तो जान जाती थी
बॉडी बिल्डिंग का।
तो भाई लोग आपको मदद करते थे, परंतु कहने का मतलब और कोई डिटर्जेंट भी नहीं था, जो राख होती थी उस राख से हम अपने बर्तन धुलाई करते थे, तो सारा राख नाखून में आ जाता था। तो ये छोटी छोटी बातें को उस समय तो जब ज्ञान दिमाग में नहीं है तो वो बड़ी बातें लगती है, तो मुझे याद कराने लगी कि ऐसी ऐसी बातें होती है। तो परंतु मुझे जो उस समय निश्चय नशा जो मस्ती चढ़ी हुई थी ज्ञान की, मैंने कहा सो व्हाट, कुछ बात नहीं है। फिर मुझे कहे कि तुम माँ बाप के साथ भी तुम डिबेट करती हो हर बात का कि ऐसी क्यों नहीं, तुम दादियों के साथ क्या बैठ के डिबेट करेंगी। तो बाबा उस समय दिमाग को कुछ न कुछ टच करता था, जो मैं उसको जवाब दे देती थी तो वो शांत हो जाती थी। तो एनीवे, तो पहले तो ये परीक्षा आई बाहर की, तो वो तो ठीक है उसको इग्नोर करके फिर मधुबन में आकर के पहुंची। फिर बाबा ने बहुत प्यार से दीदी के साथ, दीदी मनमोहिनी के साथ हमको टूर पर भेजा। तो फिर सेकंड परीक्षा आई, जो रजनी बहन तो फिर दो चार दिन रह करके फिर तो वो वापस चले गई लंदन, दीदी भी वहां छोड़ के फिर और आगे अपने टूर पर चले गई। फिर दीदी वापस आई है 21 जनवरी 1969। अब उसको और आगे और आगे और आगे भेजते रहे, ताकि वो कुंभ के मेले तक पहुंचे थे, दोनों को तार भी नहीं पहुंची, फोन भी नहीं मिले। तो दीदी बिल्कुल जैसे उस घड़ी शरीर को ट्रक पर रखने वाले थे, उस घड़ी आकर के पहुंची। तो दीदी का तो 3 मास का बहुत लंबा टूर रहा। तो उस समय एक तो लगा कि अभी यहाँ पर कोई मुझे पहचानने वाला तो है ही नहीं, परंतु जो बाबा की दृष्टि का अनुभव रहा था, तो मैंने यही सोचा कि बस जब जब मुझे बाबा की दृष्टि याद आती थी, जिस दृष्टि से बाबा ने मुझे उड़ा लिया था, तो बस मुझे लगता था कि बाबा का साथ मुझे बहुत नजदीक है। और फिर मैंने ये लक्ष्य रखा था कि जो कुमारियों की जीवन है, मुझे ऐसे ही अपनी जीवन बनानी है। मैं लंदन से आई हूँ, ये शब्द मुझे न सुनना पड़े कि इस कारण से उसका टाइम टेबल कुछ अलग है। तो 1 सप्ताह हर कुमारी पहले पोछा करती थी, आजकल तो लकड़ियां हैं, उसको घुमा करके फिर लकड़ी से करो, उन दिनों में तो घुटनों पर बैठ करके पोछा करना होता था, तो 1 सप्ताह वो करना होता था। फिर दूसरे सप्ताह में जो म्यूजियम था वहां, तो सारे कांच को अखबार से गीला करके वो साफ करना होता था, तो जितना उस कांच पर लगता था उतना हाथ पर भी वो काला इंक आ जाता था। परंतु बहुत आनंद था, सुबह को 5 से 5:30 5:30 तक ये धंधा चलता था, परंतु इतना सीखने को मिला, इतना बहुत अच्छा आनंद का जीवन था, बहुत अच्छा लगा। और बाबा भी पत्र कभी कभी दिन में 2 बारी भेजते थे, मुझे नहीं, परंतु नया म्यूजियम है, सबको उमंग देने के लिए, फिर लास्ट में याद प्यार भी उसमें बाबा लिख देते थे। तो जब पत्र बाबा का आता था सुबह को 9 बजे और शाम को 4 बजे, तो महेंद्र भाई और विमला बहन थे उस समय, तो हम सबको इकट्ठा करती थी, क्योंकि सेवा का उमंग का पत्र था। सवेरे भी हमको इकट्ठा करके बाबा का पत्र सुनाते थे, और दोपहर को भी शाम को इकट्ठा करके पत्र सुनाते थे। 4 बजे ही टाइम होता था, क्योंकि फिर 5 बजे म्यूजियम खुलता था। तो वो जो पत्र बाबा के होते थे, बाबा को हर बात ध्यान पर होती थी, इनविटेशन कार्ड कैसे हो, इनविटेशन किसको देनी चाहिए, बहुत डिटेल में। और उस समय जयपुर का म्यूजियम और दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन का म्यूजियम जहाँ मोइनी बहन थी, और ये 3rd म्यूजियम था आगरे का म्यूजियम। तो और स्थानों पर भी बाबा ऐसे पत्र भेजते होंगे, परंतु यहाँ बाबा का इतना उमंग का पत्र आता था, जो लगता था अभी जो बाबा ने कहा है अभी करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगता था। फिर दिसंबर मास में ग्रुप आ रहा था, बड़ा ग्रुप आगरा से, तो विमला बहन और महेंद्र भाई दोनों आने वाले थे, तो भी हमको कहा तुम साथ चलो। तो हम दिसंबर मास में फिर आबू आकर पहुंचे, तो बाबा को तो बहुत अच्छा लगा कि मैं सफेद साड़ी फर्स्ट टाइम बाबा देख रहे थे। और उस समय फिर बाबा ने कहा कि तुम ज्योति को जाकर के अपना अनुभव सुनाओ। वो थी बोर्डिंग स्कूल में, यहाँ सोफिया स्कूल, तो वहां पर जाकर के उनको सुनाया, तो उसको भी बहुत उमंग आया कि मैं भी चलूं, मैं भी देखूं, कुछ अनुभव करूं। तो फिर बाबा ने हम दोनों को भेजा। तो प्रैक्टिकल जो बातें थी ना, वो पहले थोड़ा कठिन लगती थी, मानो नायलॉन साड़ी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि यूपी आगरा एक तो हिंदी भाषा, इंग्लिश में बोलो वो दिखाएंगे, जानते भी हैं इंग्लिश, परंतु दिखाएंगे हमको इंग्लिश नहीं आती है, आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो हम सुनने के लिए तैयार है। तो फास्ट हिंदी सीखनी पड़ी, तो वो परीक्षा आई। फिर नेक्स्ट एक व्यक्ति आया, मैं उसको प्रदर्शनी दिखा रही थी, ये अक्टूबर में वहां पहुंची, फिर जल्दी 2 सप्ताह के बाद ही ये बात हुई। तो वो व्यक्ति जब चित्र आता है सिंप्लिसिटी लाइफ का, जीवन में योग का, तो वो मुझे कहता है, मैं नायलॉन साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि वॉशिंग में वो इजी होती, तो मुझे साड़ी देख करके कहता है, आप लोग कहते हो सिंप्लिसिटी योगी लाइफ, तो आपने ये कपड़े विदेशी क्यों पहने हुए हैं? मुझे तो इतना लजाई जो मैंने फिर विमला बहन को कहा कि अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अभी कॉटन पहननी होंगी। तो वो तो कहती थी वो तो एक ऐसा व्यक्ति था ना, तो क्या हर्जा है, क्योंकि उसको मालूम था कि ठंडे पानी में 6 गज कॉटन, भाइयों को ये अनुभव नहीं होगा कभी, आप अनुभव करना 6 गज कॉटन साड़ी का ठंडी में ऐसे होना, फिर ऊपर टेरेस पर जाओ और उसको एक क्लिप यहाँ लगाओ, फिर दूसरी क्लिप जब तक यहाँ लगाओ, कोई चिड़िया आ गई और उसने कुछ ऐसे किया, फिर वो कपड़ा गंदा हो गया, फिर यहाँ तो कभी कभी हवा में वो उतर जाती थी, फिर सेकंड टाइम 6 गज को जाकर लाई करो। परंतु ये बातें मुश्किल नहीं लगती थी, इट्स ओके, बाबा का प्यार, बाबा का अनुभव बहुत मधुर था। फिर परीक्षा आई कि बाबा अव्यक्त हुए, परंतु जो 21 जनवरी बाबा की मुरली चली, और उस समय भी फिर मधु बनाने का मौका मिला, तो बाबा यहाँ बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में, सामने दादियां बैठी है, फिर बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में ज्यादा कुमारियां, छोटी कुमारियां नहीं थी, टीचर्स भी थे बहुत सारे, 700 लोग थे, परंतु नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल दादियों के बाद छोटी कुमारियों को बिठाया गया, तो उसमें 10 से ज्यादा, शायद 8-10 ही होंगे, तो हम लोगों की लाइन थी। तो बाबा जिस घर आते हैं, पहले तो पता नहीं था कि ये बाबा है, फिर जैसे दृष्टि मिलती गई बिल्कुल पता था बाबा है। फिर तो जैसे आप लोगों ने बाबा का आवाज सुना, वो फर्स्ट टाइम वो सुनने को मिला, तो चंद्रास बाबू उस समय तो कुछ तैयारी ही नहीं थी, जल्दी जल्दी टेप रिकॉर्डर का ही जो माइक्रोफोन है वो ही सामने रख लिया, तो भी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सुनाई देता, लास्ट तक तो सुनाई नहीं दे रहा, और बाकी तो लोग बिल्कुल जो कॉरिडोर है, पैसेज है, उसमें ही खड़े थे, पीछे जहाँ कमरे हैं वहाँ आंगन में खड़े थे, तो भी इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। और 3 घंटा जो कमांडर ने अपने सेना को तैयार किया, वो 50 वर्ष का सारा कहानी वो फिर हम देखते रहे कि बाबा ने जो उस समय बोला, मधुबन में क्या क्या होगा, किस तरह से कारोबार चलेंगी, कैसे दादियां कारोबार संभालेंगी, वो मुरली मुझे आज तक भी याद है। फिर दोबारा मैंने उठा के पढ़ा नहीं है पुस्तक में या हाथ में, परंतु इतना गहरा छाप दिल को लग गया, जो एक एक बात याद है। तो परंतु उस समय भी फिर बाबा ने कहा, अभी आप लोग सब वापस अपने स्थानों पर जाओ, क्योंकि आप लोगों को अभी मन की शांति आई कि ये सब कुछ क्या हुआ, आपके जिज्ञासुओं को अभी तक पता नहीं, आजकल तो जरूर करके आप लोग व्हाट्सएप में तुरंत भेज देते, उस समय तो जब कि पत्र लिखो पोस्ट करो तब पहुंचे, टेलीफोन्स भी आबो के तो बहुत मुश्किल मिलते थे, लैंडलाइन जो थी वो वायर्स ओपन थी तो हवा लगा वायर टूटी, तो तभी बाबा ने तुरंत नेक्स्ट डे सबको कहा, दादियों को बोला कि आप लोग रुक जाना, वो भी प्राइवेट बोला, हमको तो नहीं मालूम था। फिर उस समय हम लोग वापस गए तो बहुत क्वेश्चंस थे, जैसे हम लोगों को थे वैसे सबको। फिर उस घड़ी जिज्ञासुओं के प्रश्नों को फेस करना वो एक बहुत बड़ी परीक्षा नहीं थी, क्योंकि अपना तो जो अनुभव था उस निश्चय से हम उनको बताते थे। फिर नेक्स्ट अबू आना हुआ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, जो फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग, तो अप्रैल मास की ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिकल परम योग की ट्रेनिंग। और देश बहन भी उस समय अप्रैल मई मास में कुमारियों की टीचर थी। फिर बड़ी दादी ने, महेंद्र भाई ने लिखा कि इसके ये प्रोग्राम्स है, तो दादी ने कहा भले मई मास में आए। तो फिर मई में मैं पहुंची और फिर दादी भी थी, दादी जानकी और फिर जगदीश भाई भी थे, तो वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही। परंतु फिर परीक्षा ये आई कि दादी जानकी मुझे कहे लंदन जाओ, तो मुझे रोना आए, तो क्योंकि मुझे मालूम था इतना सहज नहीं है। फिर बड़ी दादी कमरे में आती थी,
क्यों लंदन नहीं जाना चाहते थे?
मुझे लगता था कि फिर फ्रेंड सर्कल है, फिर मुझे वो खींच लेंगे, फिर पुरानी जो बातें हैं वो शुरू हो जाएंगी, घूमना फिरना फैशन करना, तो किस तरह से मैं वहां पर चल पाएंगी। तो फिर मैं दादी को कहती थी, दादी वहां तो कोई नहीं सुनने वाला है ज्ञान। तो दादी क्या कहती थी, मुझे हजारों नजर आ रहे हैं। अभी दादी कभी प्लेन में तो चली थी मद्रास और बैंगलोर जाने के लिए, उसको दादा गोविंद ले जाते थे, परंतु विदेश का तो अनुभव ही नहीं। तो दादी को कौन सा तीसरा नेत्र खुला हुआ था जिससे दादी कहे कि हजारे मुझे नजर आ रही हैं, और लिटरली बाद में तो हजारे अभी होते हैं कोई भी प्रोग्राम में। फिर बाबा ने कहा, बाबा से मिलते थे तो कुमारियों की ट्रेनिंग के बीच में बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर लास्ट में और सब कुमारियां तो चली गई, फिर मुझे रुकना था। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुमको कर्म हिसाब किताब के लिए नहीं भेज रहे हैं, बाबा तुमको सेवा अर्थ भेज रहे हैं। तो ये बाबा के शब्द मुझे मन को कंफर्ट दिया, तो फिर मुझे हाँ करना सहज हुआ। परंतु वापस लंदन पहुंचने पर तो जहाँ दरवाजा खोलता हो मुझे ही, कितना समय हुआ था, 14 मास से हुआ था ज्ञान में चलते, मैं औरों को क्या सुनाएंगी, और न वो धरनी तैयार थी, तो कहां पर भी चांस नहीं। हिंदू मंदिरों में चांस मिलता था, तब तक तो नहीं हिंदू मंदिर थे, परंतु कोई भी और संस्था वाले इतना जल्दी प्लेटफॉर्म तो नहीं देते थे। तो फिर मैंने मधुबन पत्र लिखा, दादी ने कहा था, बड़ी दादी ने, और दादी जानकी भी इंग्लिश तो दोनों पढ़ते थे, बाबा भी, मैं बाबा को भी इंग्लिश में ही पत्र लिखा था। तो बड़ी दादी को पत्र लिखा कि यहाँ तो कोई ज्ञान सुनने वाला है ही नहीं, मैं वापस भारत आऊं। तो उस समय शायद रोजी बहन थी यहाँ मधुबन में दादी के साथ, तो बहुत अच्छी इंग्लिश में, दादी ने उसको बताया होगा, परंतु बहुत अच्छी इंग्लिश में पत्र आया कि बाहर की सेवा क्यों न हो परंतु सदा स्वयं की सेवा तो है। तो उस चैलेंज में जब कोई सेवा ही नहीं तो मैं अपने को खाली खाली समझ रही हूँ, तो फिर मैंने अपना तपस्या का प्रोग्राम बनाया, हर 2 घंटे में 30 मिनट योग, और मैं अपना आत्मस्मृति का चार्ट रखती थी, अपने पास छोटा सा नोटबुक सदा रहता था और मैं उसमें नोट करती थी, 3 मिनट सोल कॉन्शियसनेस, 10 मिनट सोल कॉन्शियसनेस, कभी तो 0 मिनट सोल कॉन्शियसनेस, किसको दिखाना तो था ही नहीं, खुद के लिए ही था, तो बहुत एक्यूरेट मैं नोट करती थी। तो उससे फिर दिन भर हमारा ज्ञान और योग, फिर सेवा का कुछ न कुछ, कहाँ फोन करना, कहाँ आना जाना, वो चलता रहा। परंतु वो टाइम था जब दिमाग में ये आया कि ये मुझे तपस्या का टाइम मिला है, तो फिर वो जो दादी का एक पत्र आया उसने जादू का काम किया। फिर एक और लहर शुरू हो गई। कुछ मधुबन की मिसिंग तो थी, परंतु ऐसा नहीं है कि बस मैं चले जाऊं, परंतु यहाँ भी कुछ बाबा को करना है, कराना है, ये संकल्प था। कहानी तो डिटेल की है, परंतु जो नेक्स्ट चैप्टर था, जब दादी और हम फिर वापस लंदन गए, तो उस समय खुद के संस्कारों को देखने को मिला। तब तक अपने संस्कारों देखने को मिलने का इतना मौका नहीं था। फिर कितनी अटैचमेंट है, कितना अंदर जोश है, इरिटेशन है, तो दादी के क्लासेस से और दादी से पर्सनल बातचीत करने से वो धीरे धीरे उसको समझते गए, फिर उस पर ध्यान देते गए। फिर अब जो समय है, अपने संस्कारों को समझ करके कुछ मैनेज कर रहे हैं, कुछ उनके ऊपर विजय पा रहे हैं, दोनों बातें चल रही है। परंतु आजकल मैं देखती हूँ कि औरों के संस्कारों का जो आपस में टकराव होता, हम उनों को क्या सहयोग देवे, उनों को किस रीति से, जैसे दादियों ने हम लोगों के ऊपर मेहनत करके हम लोगों को यूनिटी में बना करके रखा। कभी भी मैं समझती इस देश बहन और हमारा तू मैं का कुछ टक्कर नहीं हुआ, इतने वर्ष हम इकट्ठे रहे और अभी भी सेवा साथी है, परंतु कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, दादियों की पालना मिल रही थी। तो आज हम देखते हैं कि जो हमसे और नेक्स्ट है लाइन में, तो उन्हों का जब कुछ टक्कर चलता, तो मैं सोचती हूँ कि हमें और योग लगाना होगा ताकि उन्हों का टक्कर न चले। जैसे दादियों ने हम लोगों के ऊपर मेहनत की, न सिर्फ समझाने की, परंतु वातावरण को इतना पक्का मजबूत बना करके रखने की ताकि कुछ टक्कर न हो, तो अभी हमें और योग करना होगा ताकि उन्हों के संस्कारों में भी कुछ शीतलता आए। अभी वो देख रहे हैं।
वैसे तो प्रश्न बहुत है, लेकिन हमारे पास 8:15 तक ही है टाइम, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है तो वो मैं पूछना चाहूंगी। वैसे बाप दादा के साथ कोई हजारों बार आपने बाबा से मिले होंगे, अभी तो लास्ट तक भी आप मिले हैं बाबा से, लेकिन ऐसे कोई एक अनुभव जो अभी तक याद है आपको, वो दिन जो आपको इतना टच कर दिया, या कुछ ऐसा कुछ अनुभव जो बाबा से आपको अनुभव हुआ, कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं?
84 में जब बड़ी दादी का अमेरिका का टूर था, पहले दादी लंदन आई थी, फिर 84 में अमेरिका का बहुत लंबा टूर था, उसमें मोइनी बहन दादी के सदा साथ होती थी, तो मैं ट्रांसलेशन के लिए दादी के साथ गई थी। तो मेरा दादी से बातचीत चलती थी एरोप्लेन में ही, क्योंकि जिस स्थान पर पहुंचे वहां तो सेवा ही सेवा। फिर एरोप्लेन में दादी मेरे से पूछती थी कि जयंती कुछ कहना है, तो मैं बार बार दादी को यही कहती थी, दादी मुझे लंदन नहीं रहना है, मुझे भारत आना है। कहती थी क्यों, फिर मैं कुछ न कुछ बताती रहती थी, उस कारण से उस कारण से, दादी को जचता ही नहीं था। तो ये 5-6 जर्नीज, लंदन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से शिकागो, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास
करने की कोशिश कर रहे थे।
दादी के साथ यही बातचीत चलती रहती थी। तो दादी ने फिर लास्ट में मुझे कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम मधुबन आएंगे तुम ये प्रश्न अभी बाबा से पूछना। मैं तो तुमको नहीं कन्विंस कर सकी हूँ, परंतु तुम भी मुझे नहीं कन्विंस कर सकी हो, तो ये प्रश्न तुम बाबा से पूछना। तो फिर दादी ने मुझे वो था 84 सितंबर, फिर 85 जनवरी एंड में दादी का फोन आया कि तुम वैसे तो कॉन्फ्रेंस में आती हो, परंतु तुम जनवरी एंड में आ जाओ, कॉन्फ्रेंस फिर शुरू होती थी बाद में फरवरी मास में। तो दादी जानकी ने भी स्वीकार किया, फिर मैं जल्दी आबू पहुंच गई और भारत की सीजन उस समय फिनिश होती थी जनवरी एंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता था कॉन्फ्रेंस, फिर विदेशी सीजन, फिर लास्ट में अप्रैल सीजन होता था, फिर भारतवासियों का सीजन डिवाइड होते थे जगह के कारण, इतनी जगह नहीं होती थी अकोमोडेशन आदि। तो लास्ट टाइम जब बाबा भारतवासियों के सीजन में आए तो उस समय हम लोगों को चांस मिलता था बाबा से हेलो करने का, जब पहुंचो बाबा से गुड बाय करने का, जब जाओ तो हेलो के लिए मैं बाबा के सामने आई तो बाबा ने टोली दी और फिर सिर्फ कहा फिर मिलेंगे। तो उस समय तो कुछ बातचीत नहीं हुई, तो मैंने सोचा ठीक है जब भी होंगे। फिर दो तीन दिनों के बाद दादी ने मुझे बुलाया और कहा कि कॉन्फ्रेंस के प्रति कुछ भाइयों को बड़े प्रश्न है, 83 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, 84 नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट 85 का थर्ड कॉन्फ्रेंस, और आबू शहर में बहुत चूंचा चली थी क्योंकि बहुत पब्लिसिटी हो गई थी कॉन्फ्रेंसेस के कारण। फर्स्ट में रॉबर्ट मुलर, दलाई लामा आए थे, फिर सेकंड में ये जो मैडम सदात आई थी, और इंग्लैंड से भी कुछ और विशेष आए थे लोग, बहुत आवाज हो गया था कि ब्रह्मा कुमारी बहुत आगे चली गई है, बहुत जेलसी का वातावरण बन गया था, इनके पास बहुत अमीर लोग आते हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो भाइयों के सामने कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस थे, तो दादी ने कहा कि बाबा को खास बुलाया है बाबा के कमरे में, और आप बाबा के जो जनरल बाबा पहले मिलेंगे सबसे, आप उसमें बैठना भले, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि बाबा का टाइम कैसा है और तुम बाबा से कैसे मिल सकती। तो ये तो लॉटरी लग गई, बाबा के गद्दी पर जहाँ अभी भी गद्दी है, और बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था तब तक, भी बड़ा नहीं बनाया था तब तक, तो करीब जो मेन भाई लोग हैं जो आजकल भी आप सामने देखते हो, जगदीश भाई, रमेश भाई, आदाद, सब वहाँ थे इस तरफ और दादियाँ इस तरफ, और मैं वहाँ पीछे से कोने में बैठ गई, और माइक्रोफोन भी नहीं था, परंतु छोटे से कमरे में सभी को बाबा का सुनाई दे रहा था। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से अपनी धारणाओं से, नम्रता से, प्रैक्टिकल जीवन से उनको आप गांव वालों की, बाबा गांव ही कहता था आबू को समय, गांव वालों की आप सेवा कर सकते आदाद। फिर सभी उठ के चले गए और बाकी सिर्फ दादियां थी, तो मैं भी सिग्नल से उठ के गई, फिर हम लोग बाहर ही बैठे थे। तो फिर धीरे धीरे जिस जिस का टर्न था दादी उनको बुलाती गई, फिर मेरा टर्न आकर के पहुंचा मिडनाइट। बाबा इतना टाइम एक एक से जो उनकी बातें थी वो पूछा, तो दादी भी उस समय बैठी नहीं, बाबा और ट्रांसलेशन की तो जरूरत नहीं थी, और मैं बस, और कोई भी नहीं था। तो बाबा ने कहा कि क्या है मन में बच्ची, तो फिर मैंने बताया, तो बाबा ने कई बातें बताई, परंतु लास्ट में बाबा ने ये शब्द कहा कि समझदार कौन, बाप या बच्ची। बस मुझे इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई, जो उसके बाद मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की कि मुझे लंदन नहीं रहना है, क्योंकि बाबा ने यही कहा कि तुम नहीं होंगी तो फर्क पड़ेगा, बस ज्यादा बाबा ने नहीं कहा, इतना तक ही फिर बोला। पहले तो बाबा प्रश्न उत्तर करते थे, ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात, परंतु लास्ट के ये जो शब्द थे उससे दिल में छाप लगी, फिर मैंने कंप्लेंट नहीं किया है। फिर दादी को भारत में बुला करके रख लिया तो भी मैंने कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मालूम ही था कि यही ड्रामा है, नहीं तो मैं शुरू में 74 में बाबा को कहा था, बाबा जिस घड़ी अभी आप कहते हो दादी के साथ जाना ठीक है, परंतु जब दादी को आप भारत बुलाएंगे मैं भी दादी के साथ ही आएंगी। तो बाबा तो सिर्फ मुस्कुराया, हाँ ना का जवाब तो दिया ही नहीं, परंतु बाबा जानते। परंतु उसके बाद फिर सेवाओं की भी बहुत सुंदर रूपरेखा होती गई, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, कॉन्फ्रेंसेस नहीं प्रोजेक्ट्स, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, उसमें 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले, एक इंटरनेशनल जिसके लिए दादी जी न्यूयॉर्क आए, और बाकी 6 नेशनल अवार्ड्स यूके, फिलीपींस, कोस्टारिका, ब्राजील, कई ऐसे देशों को। और फिर उसके 2 वर्ष बाद फिर और प्रोजेक्ट, फिर 2 वर्ष बाद और प्रोजेक्ट, फिर ऐसे होता ही गया, फिर तो ग्लोबल हाउस बन गया, तो फिर तो बैठना ही पड़ा। तो सब मुझे, जो जानते हैं मेरी कहानी को, वो मुझे लिखते भी हैं और कहते भी हैं कि अभी तो तुमको चांस मिल गया मधुबन में लंबा समय रहने का। तो मैंने कहा हाँ, परंतु ये मैंने इमेजिन नहीं किया था कि दादियों के बिगर मधुबन के रहना होगा लंबे समय, इसको कहते हैं ड्रामा।
वैसे हम दादियों के साथ का अनुभव भी सुनना चाहते थे आपसे, लेकिन नहीं हो पाएगा इस सेशन में। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है जो जानना पसंद करेंगे हम, क्योंकि कोई भी लाइफ में जो नींव जो है, फाउंडेशन मजबूत है तो इमारत बहुत लंबा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। लाइफ में भी जैसे आप जिस स्तर पे बैठे पहुंचे हैं, तो आपके जो जीवन की धारणा है कहीं ना कहीं इतना मजबूत है, इतना गहरा है, तो इतने सारे, क्योंकि और बाबा भी कहते हैं वृत्ति में जब परिवर्तन आता है तो सब कुछ परिवर्तन आएगा। जो आप इतने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर इतना ज्यादा है, तो आपकी जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप देखते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं, तो आपके वृत्ति में क्या होता है, व्हाट इज योर एटीट्यूड व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज?
ये कोई पुरुषार्थ की बात नहीं थी, परंतु जैसे ही वो निश्चय हुआ ये बाबा है और ये बाबा का कार्य है, वो कभी भी किसी बात को देखते हुए कोई ढीला नहीं हुआ है। तो मानो कि कोई खुद के संस्कारों की बात आती है तो भी बाबा है साथ, और फिर औरों के संस्कारों की कहानियां देखते हैं तो भी है कि बाबा का कार्य है। जैसे लास्ट वीक की मुरली में ये था ना कि ऐसे भी नहीं कि निश्चय की सत्युग आने वाला है, ये निश्चय की हुआ ही पड़ा है। तो नहीं तो लंदन में स्पेस फैन भी जब आई है तो 2 छोटे कमरे ही थे, और हम शब्द कह रहे हैं सत्युग की स्थापना हो रही है, विश्व की सेवा होंगी, और सामने तो कौन बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और हम विश्व में स्वर्ग लाने वाले हैं। इट साउंड्स सो स्ट्रेंज, परंतु ये निश्चय कि भगवान का कार्य है और सत्युग की स्थापना का कार्य हुआ ही पड़ा है, उसमें बाकी हमें जो अपने संस्कार परिवर्तन करने की कहानियां है वो चल रही है, बस उसमें अपना हर एक पार्ट बजा रहा है। बाकी माइक्स फिक्स है, माइक्स का आवाज निकलना फिक्स है, अभी तो प्रैक्टिकल देख रही है, ग्रह युद्ध हर देश में बिल्कुल वो चल ही रहा है, चाहे अमेरिका, चाहे हांगकांग, चाहे भारत, प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ देख ही रहे हैं, और फिर थर्ड न्यूक्लियर वॉर, उसका भी हर प्रकार से तैयारियां हैं, और लोग भी ऐसे अभी पावर में हैं जो बस बटन दबाने की देरी है, उनको दिमाग में तो यही है कि बस सब कुछ हो सकता,
क्योंकि अभी सिचुएशंस को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि आगे क्या, तो उसके लिए जवाब क्या देंगे?
हम तो आजकल बहुत स्पष्ट बताते हैं कि आगे बाहर वालों को, आगे तो और दिक्कत आने वाली है, आर्थिक समस्या आने वाली है, प्रकृति की भी बहुत समस्या आने वाली है। और एक बात मुझे आजकल ध्यान पर आ रही है कि दादियों ने जो बेगरी पार्ट देखा, मतलब कि कभी तो भोजन भी नहीं है, परंतु कभी कभी तो कितने समय तक रोटी और उसके साथ नमक, छाछ भी नहीं थी, घर में दूध ही नहीं आता था, नमक और रोटी। दादियों ने ये कितना समय तक ऐसे जीवन बिताई, दिल्ली में दादी जान की दीदी मनोहर दादी
फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स
मंथ्स तक होगा
ओके
फिर जैसे स्टूडेंट्स निकलते गए फिर एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे आपका भंडारा देखना है तो भंडारे में एक छोटा सा स्टोव और एक छोटा सा डब्बा नथिंग
आटे का डब्बा
तो फिर उसने बोरी भेजी ये आटे की फिर दादियों ने क्या कहा बोरी पर ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान वो बोरी की बोरी ही उसको पोस्ट में भेज दे तो वो नेक्स्ट डे आता है कहाँ गई बोरी हमारे बाबा के पास गई वाटरमेलन आता था वाटरमेलन के ऊपर वो लिखते थे ब्रह्मा कुमारी पहुंच जाता था आराम से
वाटरमेलन कलिंगर जो
तरबूज तो दादियों ने वो सीन देखी पास किया और पार किया हम लोगों ने वो सीन नहीं देखी है मुझे लगता है कि वो भी सीन आएंगे
रेडी रहो भाई
हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो अभी तक हम लोगों खास करके बाबा के बच्चों को घर वालों को तो कोई न कोई तकलीफ आती ही है परंतु बाबा के बच्चों को सेंटर वालों को बाबा के घर बेहद घर में सब कुछ है परंतु वो सीन हम लोगों को अवश्य पास करनी होगी जैसे कर्म भोग हिसाब किताब शरीर का जब जवान होते हैं सोचते हैं कि किसने देखा तो जैसे तुझे बुजुर्ग होने जाने हैं तो वो सीन भी आती है सामने तो परंतु विश्व के सामने तो आर्थिक समस्या अभी से ही शुरू हो गई है यूके में सबसे बड़ा डेफिसिट और डिप्रेशन जिसको कहें 20% बैक चला गया है बस फेब्रुअरी से जून तक इतने समय में 20% डाउन अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका इतना पावरफुल देश 11% पॉपुलेशन का अनएम्प्लॉयमेंट तो बाकी और देशों का क्या हाल होगा भारत का तो आप लोगों ने देखे होंगे फोटोज या बीच में वो सारी वायरल सीन्स हो गई जिस घड़ी जो जिन्हों को हर रोज की तनख्वाह मिलती वो लेबरर्स जब वापस अपने घर माइग्रेंट लेबरर्स वापस लौटे उनके पांव दिखाई कितने छाले पड़े हुए हैं क्योंकि बसेस ट्रेन्स कुछ नहीं तो भारत की जो बातें हैं वो तो सामने आएंगे ही परंतु विदेश में भी सहज नहीं होगा ये बातें देखना तो हम लोग इंटरनल अपने को कहाँ तक सब बातों से डिटैच होकर के अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं जो उस घड़ी हम औरों को मदद कर सकें ये अभी रिहर्सल चल रहा है बिल्कुल ये लास्ट रिहर्सल है घंटी बज चुकी है
आपको लगता है ऐसे
मुझे तो लगता है ऐसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है 2008 में जब इकोनॉमी का क्रैश हुआ हर एक को उम्मीद थी कि इकोनॉमी फिर इम्प्रूव होंगी और हो भी गई परंतु अब भी जिस तरह से विश्व का क्रैश हो रहा कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल अच्छी तरह से शुरू होने में एक वर्ष लगेगा एयरलाइंस सब बैंकक्रप्ट एयरलाइंस को गवर्नमेंट्स मदद दे रही है एयरलाइंस सब हर एक देश वालों की एयरलाइंस की मुश्किलात उनकी कितनी कमाई होती थी और अभी फिनिश